एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जिसका हम सब रोज इस्तेमाल करते हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। मेरा मतलब है व्यंग और कटाक्ष। और इस विषय पर गहराई से सोचने के लिए हमारे पास है रॉजर क्रेउज की किताब आयरनी एंड सार्कैज़म।
नमस्कार।
बिल्कुल। और ये शब्द इतने आम है ना कि हम शायद ही रुककर सोचते हैं कि इनका मतलब क्या है, या इनमें फर्क भी है क्या कोई। अक्सर लोग इन्हें एक ही समझ लेते हैं, पर रोजमर्रा की बातचीत से लेकर आप देखें साहित्य में, सोशल मीडिया पर, ये हर जगह है। क्रेउज की किताब हमें यही समझने में मदद करती है कि हमारा दिमाग मतलब इन टेढ़ी मेढ़ी बातों को कैसे समझता है और ये समझना क्यों जरूरी है।
हाँ।
खासकर आज के डिजिटल दौर में जहाँ गलतफहमी की गुंजाइश कितनी ज्यादा है। सही बात है। अरे कई बार टेक्स्ट मैसेज में तो पता ही नहीं चलता कि सामने वाला मजाक कर रहा है या ताना मार रहा है। तो आज की इस ज्ञान गोष्ठी का मकसद साफ है, रॉजर क्रेउज के नजरिए से व्यंग और कटाक्ष की दुनिया को खंगालना। ये सिर्फ भाषा के खेल नहीं है, इनके पीछे पूरा विज्ञान है, मनोविज्ञान है, समाज है। चलिए मिलकर समझते हैं कि ये भाषाई औजार आखिर काम कैसे करते हैं।
हाँ, तो शुरू करते हैं लेखक से। देखिए, रॉजर जे क्रेउज कोई साहित्यिक आलोचक नहीं है। जो आमतौर पर व्यंग्य पर लिखते हैं वो है एक संज्ञानात्मक मनोवैज्ञानिक।
अच्छा, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट।
हाँ, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, मतलब उनका काम ये समझना है कि हमारा दिमाग कैसे सोचता है, कैसे भाषा को समझता है। वे मेम्फिस विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान के प्रोफेसर और डीन भी रहे हैं, और भाषा और संचार पर उनका काम मतलब दशकों का है।
अच्छा, तो उनका नजरिया वैज्ञानिक है। वो ये नहीं देखते कि व्यंग कितना अच्छा है या बुरा, बल्कि ये कि हमारा दिमाग इसे प्रोसेस कैसे करता है। ये बात तो इस विषय को और भी दिलचस्प बना देती है। मतलब हम दिमाग के काम करने के तरीके को समझ रहे हैं व्यंग के बहाने, है ना?
बिल्कुल, यही उनकी खासियत है। वे जो भी बात करते हैं ना, वो प्रयोगशाला के प्रयोगों और शोध के आधार पर करते हैं। और उनकी एक और खूबी है, वे मुश्किल मतलब एकदम अकादमिक बातों को भी बड़े सरल और दिलचस्प अंदाज में पेश करते हैं। इसीलिए उनकी ये किताब MIT प्रेस की एसेंशियल नॉलेज सीरीज का हिस्सा है, जिसका मकसद ये है जटिल ज्ञान को आम लोगों तक पहुँचाना।
तो ये किताब करती क्या है? क्या ये सिर्फ व्यंग्य और कटाक्ष की परिभाषाएं देती है?
परिभाषाओं से कहीं ज्यादा ये किताब, आप कह सकते हैं, एक तरह से इन अवधारणाओं का पूरा सफरनामा है। ये बताती है कि व्यंग्य और कटाक्ष क्या हैं, ये समय के साथ कैसे विकसित हुए, हमारा दिमाग इन्हें कैसे समझता है, और हाँ, समाज में इनकी भूमिका क्या है। क्रूज का मुख्य उद्देश्य इनके पीछे के वैज्ञानिक आधार को उजागर करना है।
और आपने शुरू में कहा था कि लोग अक्सर व्यंग और कटाक्ष में फर्क नहीं कर पाते। क्या किताब इस पर रोशनी डालती है, इस कन्फ्यूजन पर?
हाँ बिल्कुल, और ये किताब का एक केंद्रीय बिंदु है। क्रूज साफ करते हैं कि व्यंग्य और कटाक्ष ये पर्यायवाची नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। उनका तर्क है कि सारा कटाक्ष व्यंग्य का ही एक रूप है, लेकिन हर व्यंग्य कटाक्ष नहीं होता।
अच्छा।
हाँ, इसे ऐसे समझें कि व्यंग्य एक बड़ा दायरा है और कटाक्ष उसका एक खास हिस्सा।
ये दिलचस्प है। तो फर्क क्या है इन दोनों में? मतलब किस आधार पर ये बंटवारा है?
कर्क है इरादे में और निशाने में। क्रूज के मुताबिक कटाक्ष में हमेशा एक पीड़ित या निशाना होता है, विक्टिम या टारगेट।
टारगेट। हाँ,
यानी कटाक्ष का इस्तेमाल किसी व्यक्ति, चीज या विचार की आलोचना करने, उसका मजाक उड़ाने या उसे नीचा दिखाने के इरादे से किया जाता है। जबकि व्यंग्य ज्यादा व्यापक है, और जरूरी नहीं कि उसमें कोई निशाना हो ही। इस पर हम आगे और बात करेंगे।
ठीक है, ठीक है। तो ये सिर्फ परिभाषा नहीं है, बल्कि उनके रिश्ते को समझने की बात है। और किताब सिर्फ आज की बात नहीं करती, बल्कि इतिहास में भी जाती है।
हाँ बिल्कुल, क्रूज हमें प्राचीन ग्रीस के दार्शनिकों से मिलवाते हैं, फिर शेक्सपियर के नाटकों में व्यंग्य का इस्तेमाल दिखाते हैं, जोनाथन स्विफ्ट जैसे लेखकों के सामाजिक कटाक्ष पर बात करते हैं, और फिर इसे आज के डिजिटल युग मीम्स और इमोजी तक ले आते हैं। साथ ही वो थ्योरी ऑफ माइंड जैसी जरूरी मानसिक क्षमताओं के बारे में भी बताते हैं, जिनके बिना व्यंग्य समझना मुमकिन ही नहीं।
तो है कि व्यंग्य और कटाक्ष हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जैसे कोई दोस्त लेट आए और हम कहें, वाह क्या टाइम पर आए हो, ये कितना आम है। पर क्रूज के मुताबिक ये आम सी बात दिमाग के लिए इतनी आसान नहीं है। सवाल यह है कि हम सीधी बात क्यों नहीं कहते, क्यों घुमा फिराकर बोलते हैं, और दिमाग इस उल्टे मतलब को पकड़ता कैसे है?
ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब हमें थोड़ा इतिहास में झांकने पर मिलता है। व्यंग्य कोई आज की ईजाद नहीं है। आप प्राचीन ग्रीस में सुकरात को याद करें, वो अक्सर कैसे अनजान बनकर सवाल पूछते थे।
हाँ हाँ, सोक्रेटिक आयरनी।
एग्जैक्टली, ताकि सामने वाले के तर्क की कमजोरियां खुद ही सामने आ जाएं। वो दिखावटी अज्ञान का इस्तेमाल करते थे, ये भी तो एक तरह का व्यंग्य ही था।
हाँ, वो तो मशहूर है। और उसके बाद
फिर रोमन विचारक आए जैसे सिसरो और क्विंटिलियन, उन्होंने इसे भाषण कला का मतलब रिटोरिक का अहम हिस्सा माना। शेक्सपियर ने तो अपने नाटकों में नाटकीय व्यंग का भरपूर इस्तेमाल किया, जहां दर्शकों को वो पता होता है जो किरदारों को नहीं। और फिर 18वीं सदी में जोनाथन स्विफ्ट जैसे लेखक आए, जिन्होंने व्यंग को सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों पर चोट करने का हथियार बनाया। उनकी ए मॉडेस्ट प्रपोजल याद है, जिसमें उन्होंने आयरलैंड की भुखमरी का वो भयानक हल सुझाया था।
हाँ, कि गरीबों के बच्चे अमीरों का भोजन बने। बापरे,
बिल्कुल, वो एक भयानक लेकिन शक्तिशाली व्यंग था जो सोचने पर मजबूर कर दे।
तो मतलब व्यंग सिर्फ हंसी मजाक नहीं बल्कि एक गंभीर हथियार भी हो सकता है।
क्या क्रूज व्यंग के अलग अलग प्रकारों के बारे में भी बताते हैं, ताकि हम इसे और साफ समझ सकें?
हाँ, वो मुख्य रूप से तीन प्रकारों की बात करते हैं जिससे तस्वीर और साफ होती है। पहला और सबसे आम है मौखिक व्यंग, वर्बल आयरनी, जब कहा कुछ जाए और मतलब ठीक उल्टा हो। जैसे वो बारिश वाला उदाहरण, क्या बढ़िया मौसम है।
हाँ बिल्कुल, यहाँ सुनने वाले को अंदाजा लगाना पड़ता है कि बोलने वाला असल में क्या सोच रहा है।
ये तो हम रोज करते या सुनते हैं। दूसरा प्रकार कौन सा है?
दूसरा है स्थितिजन्य व्यंग्य, सिचुएशनल आयरनी। ये शब्दों में नहीं, हालात में छुपा होता है। जब उम्मीद कुछ हो और हो कुछ और जाए, जो बिल्कुल उल्टा हो, जैसे कोई ट्रैफिक पुलिस वाला ही पार्किंग का जुर्माना भरा हो, या जैसे आपने पहले कहा अग्निशमन केंद्र में ही आग लग जाए, ये स्थिति का व्यंग्य है।
अच्छा, यानी हालात खुद ही मजाक कर रहे हो, समझ गया। और तीसरा?
तीसरा है नाटकीय व्यंग्य, ड्रामेटिक आयरनी। ये अक्सर हमें कहानियों, नाटकों या फिल्मों में मिलता है, जब हमें यानी दर्शकों या पाठकों को कुछ ऐसी सच्चाई पता होती है जो कहानी के किसी किरदार को नहीं पता होती।
जैसे किसी हॉरर फिल्म में हमें पता होता है दरवाजे के पीछे कौन है, पर हीरो बेखबर उधर ही जा रहा होता है।
बिल्कुल, इससे तनाव पैदा होता है। ओडिपस की कहानी भी इसका क्लासिक उदाहरण है।
ये तीनों प्रकार समझने से वाकई फर्क पता चलता है। लेकिन अब उस मुद्दे पर आते हैं जहां सबसे ज्यादा उलझन होती है, व्यंग्य बनाम कटाक्ष। आपने कहा था कटाक्ष व्यंग्य का ही हिस्सा है, पर उसमें एक निशाना होता है। क्या क्रूज इसे और खोलकर समझाते हैं?
हाँ, और ये उनकी किताब का एक बहुत अहम हिस्सा है। वो जोर देकर कहते हैं कि कटाक्ष हमेशा मौखिक व्यंग्य का ही एक रूप होता है, लेकिन ये वो रूप है जिसका एक स्पष्ट निशाना या पीड़ित, विक्टिम, टारगेट होता है। कटाक्ष का इरादा लगभग हमेशा आलोचना करना, तिरस्कार करना या मजाक उड़ाना होता है। वो जानबूझकर निशाना साधता है।
कोई उदाहरण सोचें तो? जैसे अगर किसी ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दियो और कोई कहे, क्या कमाल का काम किया है, ये कटाक्ष होगा, क्योंकि निशाना वो व्यक्ति और उसका काम है।
बिल्कुल सही, यहाँ निशाना साफ है। लेकिन अगर आप भयानक ट्रैफिक जाम में फंसे हों और कहें, वाह क्या बढ़िया ड्राइव है आज, ये मौखिक व्यंग्य तो है, पर जरूरी नहीं कि कटाक्ष हो। हो सकता है आप सिर्फ स्थिति पर अपनी निराशा जाहिर कर रहे हों, किसी व्यक्ति पर निशाना ना साध रहे हों। क्रायोज के मुताबिक ये निशाना या पीड़ित वाला तत्व ही कटाक्ष की पहचान है।
ये अंतर तो बहुत महत्वपूर्ण है। रोज की बातचीत में भी इसे पहचानने से काफी फर्क पड़ सकता है। पर अब भी सवाल वही है, हमारा दिमाग ये समझता कैसे? चाहे व्यंग्य हो या कटाक्ष, मतलब तो उल्टा ही है। दिमाग ये छलांग कैसे लगाता है?
यहीं पर क्रायोज थ्योरी ऑफ माइंड का जिक्र करते हैं। ये एक जटिल मतलब संज्ञानात्मक क्षमता है।
अच्छा, ये क्या होती है?
ये वो क्षमता है जिससे हम ये समझ पाते हैं कि दूसरे लोगों के अपने विचार, विश्वास, इच्छाएं और इरादे होते हैं जो हमसे अलग हो सकते हैं। जब हम व्यंग्य सुनते हैं तो हमारा दिमाग एक तरह की जासूसी करता है। क्या ये व्यक्ति सच में यही सोचता है? शायद नहीं, तो फिर इस माहौल में इसके हाव भाव और लहजे को देखते हुए इसका असली मतलब क्या हो सकता है।
बाबले, ये तो काफी दिमागी कसरत लगती है। मतलब जब कोई व्यंग करता है तो हमारा दिमाग अनजाने में इतनी सारी चीजें प्रोसेस कर रहा होता है। क्या इसमें कुछ इशारे या संकेत मतलब क्यूज भी मदद करते हैं?
बिल्कुल, क्रोज बताते हैं कि हम कई तरह के संकेतों पर ध्यान देते हैं, अक्सर बिना जाने ही। पहला है बोलने का लहजा, प्रोसेडी, आवाज का टोन क्या वो सपाट है या मजाकिया या जानबूझकर ज्यादा मीठी, कटाक्ष अक्सर एक खास लहजे में बोला जाता है।
हाँ, वो टोन तो पकड़ में आ जाता है कई बार।
बिल्कुल। दूसरा है चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, आंख मारना, मुस्कुराना, आंखें चढ़ाना, ये सब अशाब्दिक संकेत बहुत मायने रखते हैं। तीसरा और शायद सबसे जरूरी है संदर्भ और साझा ज्ञान, कॉन्टेक्स्ट एंड कॉमन ग्राउंड। बात कहाँ हो रही है, कौन किसे कह रहा है और उन दोनों के बीच पहले से क्या समझ या इतिहास है।
हाँ, जैसे वो दोस्त वाला उदाहरण जो फिल्मों से नफरत करता हो और कहे चलो मूवी देखें।
एग्जैक्टली। आप तुरंत समझ जाएंगे कि वो मजाक कर रहा है।
हाँ, ये बात तो है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग। तो ये सब मिलकर हमें शब्दों के पीछे झांकने में मदद करते हैं। लेकिन फिर वही बुनियादी सवाल मन में आता है, हम ये सब करते ही क्यों हैं? अगर सीधी सपाट भाषा ज्यादा कारगर है तो हम व्यंग्य और कटाक्ष जैसी जटिल चीजों पर अपनी दिमागी ऊर्जा क्यों खर्च करते हैं? क्या इसके कुछ सामाजिक फायदे हैं?
क्राउज इसके कई दिलचस्प सामाजिक कारण बताते हैं। एक तो है हास्य और बुद्धिमत्ता, ह्यूमर एंड विट। व्यंग्य अक्सर मजेदार होता है और इसका सही इस्तेमाल करने वाले को बुद्धिमान और हाजिर जवाब माना जाता है।
ये तो है।
दूसरा है समूह एकजुटता, ग्रुप सॉलिडेरिटी। कभी कभी व्यंग एक इन जोक की तरह काम करता है, जो लोग उसे समझ जाते हैं वो एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।
और जो नहीं समझते वो बाहर रह जाते हैं।
हाँ, ये अपनेपन की भावना पैदा करता है। तीसरा है आलोचना को नरम करना, सॉफ्टनिंग क्रिटिसिज्म। इसे क्रूज टिंज हाइपोथेसिस कहते हैं। कभी कभी सीधी आलोचना कड़वी लग सकती है। व्यंग के जरिए कही गई वही बात थोड़ी हल्की लग सकती है, जैसे आलोचना पर हल्का सा रंग चढ़ा दिया हो, हालांकि ये हमेशा काम नहीं करता।
हाँ, कभी कभी तो ज्यादा चुप जाता है।
बिल्कुल। और चौथा कारण, जो सिक्के का दूसरा पहलू है, वो है आक्रामकता और उपहास, अग्रेशन एंड मॉकरी। कटाक्ष आक्रामकता दिखाने या किसी का मजाक उड़ाने का एक हथियार भी है। आप बिना सीधे कन्फ्रंट किए अपनी नापसंदगी जाहिर कर सकते हैं।
तो ये तो वाकई दोधारी तलवार है, एक तरफ हास्य और जुड़ाव, दूसरी तरफ आलोचना और आक्रामकता। इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। और आज के जमाने में जहां हमारी ज्यादातर बातचीत स्क्रीन पर होती है, वहां इसका क्या होता है? टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, सोशल मीडिया, जहां ना आवाज का लहजा है ना चेहरे के भाव।
देखिए, ये आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है, जिसे क्रूज संकेत समस्या, क्यूइंग प्रॉब्लम कहते हैं। जब अशाब्दिक संकेत, वो नॉन वर्बल क्यूज, गायब हो जाते हैं, तो व्यंग्य या कटाक्ष को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए ऑनलाइन गलतफहमियां इतनी आम हैं।
हाँ,
कोई मजाक में कुछ लिखता है और पढ़ने वाला उसे गंभीरता से ले लेता है या अपमान समझ लेता है।
ये तो रोज की कहानी है। मेरे साथ खुद कई बार हुआ है कि मैंने कुछ लिखा और उसका मतलब बिल्कुल गलत निकाला गया।
सबके साथ होता है। इसी समस्या से निपटने के लिए ही तो लोगों ने नए तरीके खोजे हैं, जैसे टेक्स्ट में जोर देने के लिए इटैलिक्स या ऑल कैप्स का इस्तेमाल करना, या वो अजीब तरीके से लिखना, THIS टाइप ऑफ राइटिंग।
हाँ हाँ, वो वाला।
और इमोजीज और इमोटिकॉन्स का इस्तेमाल तो बहुत ही आम है। आंख मारने वाला, जिंज, आंखें घुमाने वाला, भौं, हंसने वाला, हाहा, ये सब टोन बताने की कोशिश करते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म्स पर जैसे रेडिट पर लोग कटाक्ष के बाद एस लिख देते हैं, ये बताने के लिए कि ये कटाक्ष था भाई।
अच्छा, एस मतलब सार्कैज़म।
हाँ, और दिलचस्प बात ये है कि क्रूज बताते हैं कि ये समस्या नई नहीं है। 16वीं सदी में भी किसी ने एक कटाक्ष चिन्ह, एक उल्टे प्रश्न चिन्ह जैसा बनाने का सुझाव दिया था, पर वो चला नहीं।
वाह, यानी 500 साल पहले भी लोग टेक्स्ट में टोन की समस्या से जूझ रहे थे। कमाल है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो क्रूज की किताब से निकलने वाले सबसे जरूरी संदेश या निष्कर्ष क्या होंगे? 5 मुख्य बातें क्या होंगे?
मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए। पहली, कटाक्ष व्यंग का हिस्सा है पर दोनों एक नहीं है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, खासकर कटाक्ष में निशाने वाली बात। रोज की बातचीत में ये हमें ये समझने में मदद करता है कि कोई मजाक कर रहा है या सच में चोट पहुंचाना चाह रहा है।
ठीक है, दूसरा।
दूसरा, संदर्भ ही सब कुछ है, कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। कोई भी वाक्य अपने आप में व्यंग्यात्मक नहीं होता, उसका मतलब हमेशा स्थिति, बोलने वाले, सुनने वाले और उनके आपसी रिश्ते पर निर्भर करता है।
बिल्कुल। तीसरा,
व्यंग्य समझना दिमाग की एक बड़ी उपलब्धि है। ये कोई आसान काम नहीं है। ये हमारी थियोरी ऑफ माइंड और सामाजिक समझ का सबूत है। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग कितना सक्षम है।
और चौथी बात?
हाँ, चौथी बात ये कि व्यंग्य और कटाक्ष सामाजिक तौर पर बहुत शक्तिशाली औजार हैं, अच्छे भी और बुरे भी। ये दोधारी तलवार वाली बात।
यस।
ये लोगों को हंसी और अपनेपन से जोड़ सकते हैं, लेकिन गलत इस्तेमाल से रिश्तों में कड़वाहट भी ला सकते हैं या किसी को नीचा दिखा सकते हैं। भारत में ही देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी से लेकर राजनीतिक कार्टून तक व्यंग्य का कितना इस्तेमाल होता है, कभी मनोरंजन के लिए, कभी सोचने पर मजबूर करने के लिए।
सही कहा। और पांचवा, जाहिर है डिजिटल दुनिया की चुनौतियां, है ना? बिना चेहरे और आवाज के संकेतों के ऑनलाइन बातचीत में व्यंग अक्सर गलतफहमी का शिकार हो जाता है। शायद हमें ऑनलाइन लिखते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, या इमोजी जैसे संकेतों का समझदारी से इस्तेमाल करना सीखना होगा।
बिल्कुल। अब कुछ ऐसे विचारों पर बात करते हैं जो इस किताब में वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं।
क्रेउस के कुछ मुख्य तर्क, अगर हम उन्हें अपने शब्दों में कहें तो। पहला विचार, सारा कटाक्ष मौखिक व्यंग्य है, पर उसकी पहचान उसका निशाना है। कटाक्ष जानबूझकर निशाना साधने वाला व्यंग्य है। ये जानबूझकर निशाना साधने वाली बात बहुत अहम है। ये इरादे को साफ करती है। ये हमें याद दिलाता है कि शब्दों के पीछे एक मकसद छुपा हो सकता है।
बिल्कुल। दूसरा विचार, व्यंग समझना शब्दों का खेल नहीं, बल्कि सुनने वाले की क्षमता है कि वो बोलने वाले के छिपे इरादे और सोच को भांप सकें। ये दिमाग से दूसरे के दिमाग को पढ़ने जैसा है, जो संदर्भ और आपसी समझ से मुमकिन होता है। ये बात हमारे दिमाग की सामाजिक बुद्धिमत्ता की ताकत दिखाती है ना?
हाँ, बिल्कुल। और तीसरा?
तीसरा विचार डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। आज के डिजिटल युग में कटाक्ष चिन्ह की जो तलाश चल रही है, वो एक सदियों पुरानी चुनौती को दिखाती है। इंसान की मौजूदगी के ढेरों अशाब्दिक संकेतों को सपाट टेक्स्ट में कैसे उतारा जाए, ये हमें इमोजी और SHO के इस्तेमाल को एक बड़ी ऐतिहासिक तस्वीर में देखने में मदद करता है।
ये बिल्कुल सही है। हम आज भी उसी समस्या का हल ढूंढ रहे हैं। कमाल है।
ते हैं जो हमें जोड़ती है। ये उस अपनेपन की भावना की बात करता है, जब दो लोग एक ऐसा मजाक समझ जाते हैं जो शायद बाकियों को समझ ना आए।
ये अनुभव तो हम सबने किया होगा। अब सबसे काम की बात, इस सारे ज्ञान का हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, इसे कैसे इस्तेमाल में लाएं?
देखिए, कई तरीकों से ला सकते हैं। एक तो निजी रिश्तों में, हम जो कह रहे हैं उसके असर के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं। क्या हमारा मजाक किसी को चुभ सकता है? साथ ही दूसरों के व्यंग्य को समझने की कोशिश कर सकते हैं, क्या वो सिर्फ हल्का फुल्का मजाक है या उसमें कोई छिपा हुआ कटाक्ष है?
ये जरूरी है।
दूसरा, काम की जगह पर ईमेल या चैट में टोन का अंदाजा लगाना मुश्किल होता है, तो शायद जवाब देने से पहले एक बार रुककर सोचना बेहतर है, कहीं हम गलत मतलब तो नहीं निकाल रहे।
बिल्कुल। और मीडिया के बारे में?
हाँ, मीडिया को समझने में आजकल व्यंग्यात्मक खबरें, मीम्स या सोशल मीडिया पोस्ट भरी पड़ी हैं। ये समझना जरूरी है कि कौन सी बात सच है और कौन सी सिर्फ व्यंग्य या कटाक्ष।
हाँ, ये ऑनलाइन दुनिया में तो बहुत जरूरी होना रहे आजकल। और बच्चों के साथ बातचीत में इसका क्या महत्व है?
बच्चों को समझने में, क्रूज बताते हैं कि बच्चे अक्सर व्यंग्य नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी थ्योरी ऑफ माइंड अभी पूरी तरह विकसित नहीं हुई होती है। तो अगर कोई बच्चा आपके व्यंग्य पर हंसने के बजाय उलझन में दिखे, तो ये उसकी समझ की कमी नहीं, बल्कि उसके दिमागी विकास का एक पड़ाव है। यह जानकर हम उनके साथ ज्यादा धैर्य रख सकते हैं।
अच्छा पॉइंट है। और डिजिटल बातचीत में?
और हाँ, डिजिटल बातचीत में हम इमोजी, GIFs या ऐसे जैसे संकेतों का बेहतर इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, ताकि हमारी बात का सही मतलब पहुंचे, गलतफहमी से बचा जा सके।
ये सब वाकई बहुत व्यवहारिक बातें हैं। इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे बड़ी सीख या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही?
मेरे लिए शायद सबसे अहम बात ये रही कि व्यंग और कटाक्ष भाषा की कोई गड़बड़ी या कमी नहीं है। ये तो इंसान के सोचने, समझने और समाज में घुलने मिलने के बहुत ही विकसित और जटिल तरीके हैं। ये दिखाते हैं कि इंसान सिर्फ जानकारी देने के लिए ही भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि रिश्ते बनाने, भावनाएं जताने और यहाँ तक कि चुपके से हमला करने के लिए भी करता है।
ये मल्टी फंक्शनल टूल है एक तरह से।
और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि एक जरा सी व्यंग्यात्मक मुस्कान या एक टेढ़े वाक्य के पीछे दिमाग में कितनी प्रोसेसिंग चलती है। थियोरी ऑफ माइंड, संदर्भ, संकेत, ये सब मिलकर उस एक पल को संभव बनाते हैं। ये हमारे दिमाग की शक्ति और हमारे सामाजिक जीवन की बारीकियों का अद्भुत संगम है। और श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ जाते हैं, अगली बार जब आप कोई व्यंग्यात्मक बात सुने या कहें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, इसके पीछे का इरादा क्या है, कौन सा संकेत इसे व्यंग्यात्मक बना रहा है और इसे समझने या कहने में दिमाग ने कितनी मेहनत की होगी।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।